धौला पुस्तक चौदवी लेक्चर नंबर 9 ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम शुद्धात्मने नमः नमो अरिहंताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयरियाणम् नमो वैशायाणम् नमो लोए सौवसाहूणम् सिद्धे विवुद्धसयले अज्जत्थ बहित्थ बन्धनम् मुक्के भत्तिये अहम् नमिउम् पुनो पुनो बंधनम उच्चम। आचार्य श्री वीरसेन स्वामी रचित यह धौला नामक टीका है, जो षटखंडाग्रम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबलि आचार्य। इसमें जो पांचवा खंड है उसका नाम है वर्गणा, और उसमें बंधन अनियोग द्वार की पहले हमने चर्चा करते हुए उसमें चार प्रकार की बातें देखी थी। अभी 20 दिन का गैप हुआ ना, तो क्या पढ़ रहे थे सब भूल गए हम। तो जो हमने अभी मंगलाचरण देखा वहां पर लिखा है ना कि बंधन अनियोग द्वार में चार, पहला पेज चार कौन सी बातें बताई उन्होंने, बंध बंधक बंधनीय और बंध विधान। तो उसके बाद आगे उन्होंने उसके नए और निक्षेप आदि बताए थे, और उसमें से कौन सा बंध यहाँ उन्हें गर्भित है, इष्ट है, उसकी बात हमने देखी थी विस्तार से। अब जो वर्गणा की बात है ना, वहाँ कहाँ से शुरू होती है वो हमने देखते हैं, क्योंकि ये तो बंध भी देखा, बंधक की भी बात हमने पहले पुस्तकों में देखी थी, जो बंध विचय स्वामित्व वगैरह जो पहले हमने खुद्दा बंध और बंध विचय स्वामित्व में इनकी चर्चा की थी। अब ये जो आगे आते हैं वर्गणा की, जहाँ शुरू हुई ना, हाँ वर्गणा की बात, हाँ वर्गणा का द्रव्य यानी जो बांधा जाता है उसकी बात यहाँ 50 पेज में उन्होंने शुरू की थी कि वर्गणा का प्रकरण है। और वर्गणा में फिर वो नए निक्षेप प्ररूपणा वगैरह वगैरह सभी बात चली थी, तो वो निक्षेप आदि की बात उन्होंने बताई थी। और वर्गणा की प्ररूपणा ये पेज नंबर 54 पर देखते हैं, यानी वो जो वर्गणा द्रव्य समुदाहार में उन्होंने 14 इनियोग बताया है उसमें वर्गणा प्ररूपणा की बात है उसमें। तो ये वर्गणा प्ररूपणा में एक प्रदेशी पुद्गल यानी एक प्रदेशी वर्गणा कहेंगे उसको, परमाणु पुद्गल द्रव्य वर्गणा कहेंगे, द्विप्रदेशी ऐसे संख्यात प्रदेशी असंख्यात प्रदेशी अनंत प्रदेशी, इस तरह से ये पुद्गल की द्रव्य वर्गणा होती है। उसके बाद अनंत अनंत पुद्गल परमाणु के द्रव्य वर्गणा के बाद आहार द्रव्य वर्गणा, जिसको हम जीव जो ग्रहण करते हैं वो ऐसे पांच वर्गणा है, कौन सी याद है आपको, आहार वर्गणा, तेजस वर्गणा, भाषा वर्गणा, मनोवर्गणा और कर्मण। इसलिए क्रम से इसलिए याद रखना है कि आगे आगे वाली कितने नंबर ऑफ परमाणु की वो वर्गणा है वो बताए। ये पांच वर्गणाएं हैं और उनके बीच में अंतराल में जो वर्गणाएं हैं, पांच के बीच में कितनी होगी, चार, उसको क्या कहेंगे, वो जीव उसको ग्रहण नहीं करता उसका नाम है अग्राह्य वर्गणा, या आहार वर्गणा, फिर अग्राह्य वर्गणा, तेजस वर्गणा अग्राह्य वर्गणा, फिर भाषा वर्गणा अग्राह्य वर्गणा, मनोवर्गणा अग्राह्य वर्गणा, और फिर कारमाण वर्गणा। इस तरह से उसका स्वरूप हमने देखा था। तो ये कारमाण वर्गणा के पश्चात देखो यहाँ पेज नंबर 64 पर कारमाण वर्गणा था 88 नंबर के सूत्र में। उसके बाद ध्रुवस्कंध द्रव्य वर्गणा होती है, ध्रुवस्कंध के बाद सांतर निरंतर, सांतर निरंतर के बाद ध्रुव शून्य वर्गणा होती है। ध्रुव शून्य जहाँ जहाँ शून्य वर्गणा कहेंगे वहाँ इसी कोई एग्जिस्टेंस में ही नहीं वर्गणा। तो उसका स्वरूप क्यों बताया? क्योंकि इतने परमाणुओं की वर्गणा से लेकर इतने परमाणुओं की वर्गणा तक ऐसे कोई स्कंध ही इस विश्व में नहीं है, उसको बताने के लिए ध्रुव स्कंध वर्गणा ध्रुव शून्य वर्गणा वगैरह कहेंगे। कहीं उसका नाम नभो वर्गणा भी लिखा है, उसका भी अर्थ वही है, वो एग्जिस्टिंग नहीं है। ऐसी चार वर्गणाएं जो एग्जिस्टिंग में ही नहीं है उसको वहाँ वहाँ बताए देते। अब ये ध्रुव शून्य द्रव्य वर्गणा के बाद प्रत्येक शरीर द्रव्य वर्गणा है, जो हमारा विषय यहाँ चल रहा था। तो प्रत्येक शरीर द्रव्य वर्गणा किसको कहना? ये जीव ग्रहण नहीं कर रहा है, पर वो ग्रहण करने के बाद वो जो स्कंद रूप हो गया है उसको हम प्रत्येक शरीर द्रव्य वर्गणा कहेंगे। देखो यहाँ से 65 पेज निकालना। वहाँ ध्रुव शून्य द्रव्य वर्गणा के ऊपर प्रत्येक शरीर द्रव्य वर्गणा है, 91 नंबर का सूत्र हमने देखा था। उसके स्पष्टीकरण में क्या देखते हैं? एक एक जीव के एक एक शरीर में उपचित हुए हैं, संचित हुए हैं, इकट्ठे हुए हैं कर्म और नौकर्म स्कंदों की, सब मिलकर प्रत्येक शरीर द्रव्य वर्गणा संज्ञा है। यानी वो कार्बन शरीर भी है, तेजस शरीर भी है, औदारिक शरीर भी है, उसके परमाणु भी, उसके विश्रोसोपचय भी है, ये सब मिलकर वहाँ पूरा एक स्कंद बना है, उसको क्या कहेंगे हम? प्रत्येक ध्रुव शून्य तो हो गया, उसके आगे वाली नेक्स्ट
प्रत्येक शरीर,
वो प्रत्येक शरीर द्रव्य वर्गणा है। अब वो मिनिमम किसके होगी? तो सूक्ष्म निगोद अपर्याप्त कमी। अभी वो कौन सा क्षपित कर्मोशिक वगैरह वगैरह वो सभी बातें उससे मतलब नहीं है, किसके होती है बस यहाँ तक हम देखेंगे। और फिर वो तो पहले लंबे काल तक वो सूक्ष्म निगोद अपर्याप्त में रहा, परंतु उसमें आने के पहले वो क्षपित कर्मोशिक था, यानी क्षपित कर्मोशिक रूप से करके वहाँ आया है और इतने लंबे काल तक रहते तो वहाँ पर भी एक देखिए ये सूक्ष्म निगोद आदि एक इंद्रियों में क्या होता है, वहाँ जाने पर जो पंचेंद्रियों में से वहाँ चला गया उसकी स्थिति कांडक होते रहते हैं, यानी उसकी स्थिति घटती चली जाती है। ये तो हमने पहले देखे थे अनुभाग कांडक और स्थिति कांडक एक इंद्रियों में भी होते रहते हैं। यह सूक्ष्म निगोद को लिया, वहाँ लंबे काल तक वो रहा, यानी उसने और स्थिति और घटाई है, स्थिति घटाई ने वो परमाणु भी अधिक मात्रा में खिर गए हैं। अब ऐसा जीव मनुष्य में आकर 8 वर्ष में वो तो केवल ज्ञान प्राप्त करके फिर भव के अंत में उसकी जो शरीर के जो स्कंद रहेंगे सभी के कार्बन के औदारिक के वगैरह वो सब मिनिमम हो गए, इस तरह से यहाँ उसका वर्णन किया है। यानी जो अयोग केवल के अंतिम समय में उसके प्रत्येक शरीर के जो द्रव्य वर्गणा है वो मिनिमम है, ये हमने बात वहां देखी थी, वो 66 पेज पर हमने देखी थी। जरा वहां से हम देखते हैं अभी उसमें कितना है परमाणु, यानी उसमें मैग्नीट्यूड कितनी है वो बताने के लिए 66 पेज पर नीचे का पैराग्राफ है, वहां से हम देख रहे हैं। देखो क्योंकि डायरेक्ट हम विषय शुरू करेंगे तो कहां से शुरू किया क्या उस ख्याल में नहीं आएगा, इसलिए यहां से देख रहे हैं। औदारिक शरीर, तेजस शरीर और कार्बन शरीर के परमाणुओं के तीन पुंज ऊपर स्थापित करके, यानी वो जो शरीर के जो नंबर ऑफ परमाणु है उसको वहां लिखना, और उनके पहले ही विश्रसोपचयों के पुंज स्थापित करके, यानी उनके जो विश्रसोपचय का अर्थ हमने क्या देखा था, भले कार्बन शरीर हो, तेजस हो या औदारिक शरीर हो, उसके एक एक परमाणु के साथ जीव राशि से अनंत गुणे ऐसे अन्य पुद्गल परमाणु उसके स्निग्धत्व रुक्षत्व के कारण जुड़े हुए हैं, बंधे हुए हैं, मेरी भाषा में चिपके हुए हैं, वो पूरा पुंज जो है उसको विश्रसोपचय कहेंगे। और तीनों शरीरों के अलग अलग होते हैं, जुदे जुदे, यानी तीन शरीर और उनके तीन ये विश्रसोपचय, यानी 6 पुंज हो जाएंगे। तो कहते ये सभी में जघन्य लिया था हमने, वो अभी जो बताया ना सूक्ष्म निगोद में इतना लंबे काल तक रहा, जो संक्षिप्त कमांशिक रूप से ही आया हुआ था, और उसने आठवें साल के बाद सम्यक और संयम को धारण करके सहयोगी हुआ था, और फिर हाँ अयोगी के अंतिम समय में उसके परमाणु पुंज मिनिमम थे। अब वो मिनिमम के ऊपर एक एक परमाणु कैसे बढ़ाना उसकी उन्होंने बात की थी, कैसे बढ़ाना, तो उसका एक एक परमाणु कम खीरा होगा इस तरह से बढ़ाए थे, और फिर नीचे एक एक समय लाया था, या योग बढ़ाते हुए भी बढ़ाया था, अलग अलग पद्धति से उसको बढ़ाते 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 उन्होंने अलग अलग बात बताई थी। तो उसमें कहाँ तक बढ़ाया था उन्होंने, देखो अभी हम देखते हैं। हाँ वो तो क्षपित गुणित कर्मांशिक तक ले गए थे, यानी जो क्षपित कर्मांशिक में हमने क्या किया, उल्टे क्रम से देखा उसको बढ़ाया, फिर एक समय पूर्व में यानी अयोगी के अंतिम समय के पहले द्विचरम में देखा, फिर और नीचे, यानी एक एक समय में उसको अलग अलग पद्धति से बढ़ाते बढ़ाते नीचे 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 लाया था। और फिर वो तो योग की वृद्धि से भी वृद्धि कराया था। अब उसके बाद अंतिम विकल्प को उन्होंने बताया जो उत्कृष्ट 71 पेज पर नीचे का पैराग्राफ, ये सब हमने पढ़ा था विस्तार से, केवल उसको जरा हम रिवाइज कर रहे हैं। अब मैक्सिमम किसके होता, देखो अंतिम विकल्प को कोई नीचे का पैराग्राफ है ना, कोई एक गुणित कर्मांशिक जीव सातवीं पृथ्वी में तेजस और कार्मन शरीर को उत्कृष्ट करके, वहां तेजस कार्मण का किया है परंतु वहां से लौटकर उसका औदारिक का भी उत्कृष्ट करना है, अभी बाकी है, पुनः मरकर दो तीन भाव तक तीर्यंचों में उत्पन्न होकर, क्योंकि डायरेक्ट तो उसको मनुष्य में नहीं आ सकता क्योंकि उसको क्षीरणी भी चढ़नी है, मनुष्य में क्या अभी तीर्यंच में उसको समय तो भी नहीं होगा, इसलिए दो तीन तीर्यंचों के भाव करके पूर्व कोटि की आयु वाले मनुष्यों में उत्पन्न हुआ। ये पूर्व कोटि वाला क्यों लिया, क्योंकि औदारिक हाँ संचय ज्यादा है, क्योंकि जो औदारिक शरीर के परमाणु ग्रहण करता है उसकी उत्कृष्ट स्थिति तो पूर्व कोटि, यानी समय प्रबद्ध तो उतना ही है पर पूर्व कोटि तक वो संचित रहेंगे। पुनः गर्भ से लेकर अंतर्मूर्त अधिक 8 वर्ष का होने के बाद सहयोगी जिन होकर जल्दी सहयोगी बनाया, क्योंकि उसके जो कर्म की निर्जरा अधिक मात्रा में हो जावे। कुछ कम पूर्व कोटि काल तक संयम गुण श्रेणी निर्जरा करके अयोगी गुणस्थान के अंतिम समय में, यानी वहां गुणश्रेणी रूप से द्रव्य कृपाया और अंतिम समय में स्थित हुआ, उसके प्रत्येक शरीर की वर्गणा पूर्वोक्त प्रत्येक शरीर की वर्गणा के समान होती है। अभी यहां तो ये जो क्षपित कर्मांशिक से गुणित कर्मांशिक तो उन्होंने समझाया, और ये सारे अंतिम समय में समझाए, पहले हमने तो बताया था ना उल्टे क्रम से आने एक एक समय नीचे, वो तो बाद में बता रहे, पहले अंतिम समय में रखते हुए उत्कृष्ट विकल्प तक ले गए, और उतना ही विकल्प द्विचरम समय में किसी का होगा, इस तरह से उसकी बात उन्होंने बताई है। अब उसके बाद उन्होंने वो अंतिम समय वाले जो नारकी है उन्हीं में ये सब बातें घटित की थी, और उसके बाद उन्होंने अल्प बहुत्व भी बताया था जो पेज नंबर 73 पर था नीचे के पैराग्राफ में, क्योंकि एज इट इज सामान्य से औदारिक शरीर के परमाणुओं से वैकृत शरीर के परमाणु जो है वो असंख्यात गुणे होते हैं, भले वो सूक्ष्म है परंतु नंबर ऑफ परमाणु ज्यादा है। जब हम कहेंगे स्कंद छोटा है क्या बड़ा है तो उससे नंबर ऑफ परमाणु से कोई मतलब नहीं है, जैसे औदारिक शरीर वो स्थूल जाति के परमाणु है उनकी संख्या कम है, वैकृत शरीर सूक्ष्म है उसके परमाणु की संख्या असंख्यात गुणा है। और उससे आहारक शरीर के असंख्यात गुणे हो गए। औदारिक शरीर से वैकरिक शरीर के असंख्यात गुणा, उससे आहार के असंख्यात गुणा, उससे तेजस के अनंत गुणा और कारमाण के अनंत गुणा, ये उन्होंने बताया था। अब हम आते हैं, ये जो हमने अल्पभूतो देखे थे, फिर आगे चलते हैं। ये पूरा उन्होंने अल्पभूतो बताया था, ये जीवों से सहित और जीवों से रहित की बात उन्होंने बताई थी। 75 पेज पर भी वही अल्पभूतो आगे बढ़ाया था उन्होंने। अब यहाँ हम आते हैं अपना जो विषय, अपना तो 83 पेज पर शुरू होने वाला है। तो ये सारे उन्होंने अल्पभूतो वगैरह बता दिए हैं। अब हम 78 पर आते हैं थोड़ा, क्योंकि वहाँ विशेषार्थ हम पढ़ेंगे, तो फिर हमने जो जो सारा देखा है उसका हमें याद आ जाएगा कि हमने क्या क्या पढ़ा था। 83 पर हम है, पर 78 पर आना पहले। अब किसको क्या कहना वो जरा सेकंड पैराग्राफ में ही बताते हैं। देखो यहाँ पर कर्म स्थिति काल के भीतर, यानी 70 कोड़ा कोड़ी सागर काल के भीतर संचित हुए 8 प्रकार का कर्म प्रदेश समुदाय की कार्मण शरीर संज्ञा है। कार्मण शरीर यानी जो कर्म रूप परिणमित हुए 8 प्रकार के जो है वो सबको मिलकर कार्मण शरीर कहेंगे। क्योंकि उत्कृष्ट स्थिति को लेना था इसलिए उसको लिया। उसके भीतर संचित हुए ने किसी एक पर्टिकुलर समय में 70 कोड़ा कोड़ी सागर पहले बंधे हुए भी कुछ परमाणु है जो मिथ्यात्व के है, परंतु उनकी स्थिति सत्ता है ना वहां पर। और फिर वहां से लेकर एक एक समय कम करो तो उतने पूर्व में बंधे हुए सारे वहां कुछ न कुछ परमाणु पड़े हैं। जिसका आबाधा चल रहा है उसका तो पूरा समय प्रबद्ध पड़ा है, इस तरह से उसको बताना चाहते हैं। अब तेजस शरीर संज्ञा किसको कहेंगे, तो 66 सागर काल के भीतर संचित हुए, क्योंकि तेजस की उत्कृष्ट स्थिति 66 सागर होती है। और वैकरिक शरीर मैक्सिमम 33 सागर वाला है, तो 33 सागर काल के भीतर संचित हुए 9 कर्म प्रदेश समुदाय के वैकरिक शरीर संज्ञा है। और 33 सागर काल के भीतर संचित हुए, नहीं नहीं वो तो 33 सागर की तो वैकरिक शरीर, और औदारिक शरीर क्षुल्लक भ्रवण भव ग्रहण काल से लेकर मिनिमम से लेकर 3 पल्य काल के भीतर संचित हुए 9 कर्म प्रदेश समुदाय की औदारिक शरीर संज्ञा है। आहारक शरीर तो अंतर्मूर्त, उसकी स्थिति अंतर्मूर्ति होती है, तो उसके काल के भीतर संचित हुए 9 कर्म प्रदेश समुदाय की आहारक शरीर संज्ञा है। इसलिए नारकी जीव के अंतिम समय में उत्कृष्ट स्वामित्व देना चाहिए, ये क्यों ये उसने बताया। अभी हम विशेषार्थ को पढ़ेंगे। यहाँ पर प्रत्येक शरीर द्रव्य वर्गना का विचार करते हुए वह एक जीव की अपेक्षा जघन्य और उत्कृष्ट किस जीव के होती है, इस बात का विस्तार से निरूपण किया गया है। जिन शरीरों का स्वामी एक ही जीव होता है और उनके आश्रय से अन्य जीव नहीं उपलब्ध होते, उन शरीरों के समुदाय का नाम प्रत्येक शरीर द्रव्य वर्गना है। शरीरों के अकेले एक शरीर को प्रत्येक शरीर द्रव्य वर्गना नहीं कहा, कार्मान तेजस औदारिक और उनके विश्रसोपचय। आगम में ऐसे 8 प्रकार के जीव बतलाए हैं जिनके शरीरों के आश्रय से अन्य जीव नहीं रहते। वे 8 प्रकार के जीव ये हैं: केवली जिन, देव, नारकी, आहारक शरीर, पृथ्वीकायिक, जलकायिक, अग्निकायिक और वायुकायिक। तो किसके आधार से रहेगी इनको छोड़कर मनीषा बेन? हाँ, 3 इंच। मनुष्यों में किसको छोड़ना? केवली को और आहारक शरीर वाले मनुष्यों को छोड़ना। यानी 3 इंच और मनुष्य, तो 3 इंच में कौन कौन आए? हाँ, अपन एक इंद्रिय को लेना कि नहीं लेना? वनस्पति, प्रत्येक वनस्पति जिसके आधार से लेते ना उसको लेना, जिसको हम कहेंगे जिन प्रत्येक सप्रतिष्ठी जिसको कहेंगे। देखो यहाँ सर्वप्रथम यह देखना है कि इन जीवों में जघन्य प्रत्येक शरीर द्रव्य वर्गणा का स्वामी कौन है, मिनिमम किसके है, वो पहले में पहले विचार किया था जो हमने अयोगी के अंतिम समय में देखा था, जो सभी कंडीशन जो देखी थी ना, क्षपित कर्मांशिक वगैरह वगैरह। तो कहते जघन्य किसके होता है, उत्कृष्ट प्रत्येक शरीर द्रव्य वर्गणा का स्वामी कौन जीव है। जीव दो प्रकार के होते हैं, एक क्षपित कर्मांशिक और दूसरे गुणित कर्मांशिक। क्षपित कर्मांशिक यानी मैक्सिमम उन्होंने खिपाया है, अभी उसके लिए बहुत सारी हमने कंडीशन देखी थी, योग जघन्य हो तो कम ग्रहण किया है, ऐसी ऐसी बातें हमने देखी थी। तो एक क्षपित कर्मांशिक, दूसरे गुणित कर्मांशिक। जो क्षपित कर्मांशिक जीव होते हैं उनके कर्म वर्गणाएं उत्तरोत्तर ह्रस्व होती जाती है, ह्रस्व ने कम होती चली जाती, और अयोगी के अंतिम समय में वे सबसे न्यून होती है। इसलिए अयोगी जन के अंतिम समय में प्रत्येक शरीर द्रव्य वर्गणा सबसे जघन्य होती है। ये कारमान की अपेक्षा ही क्यों लिया, क्योंकि कारमान में ही अनंतानंत होते हैं, तो पहले में पहले उसी को घटाया है। यहाँ इस वर्गणा से औदारिक शरीर, तेजस शरीर और कारमान शरीर तथा इनके विश्रसोपचय, इन छह पुंजों का ग्रहण होता है। गुणित कर्मांशिक जीव वे कहलाते हैं जिनके कर्म वर्गणाएं उत्तरोत्तर महापरिणाम वाली होती जाती है, यानी बहुत अधिक संख्या में। वो हमने देखा संकलेश होता है, उत्कृष्ट योग होता है बहुत बार वगैरह, उसकी जो हमने छह आवास देखे थे आपको याद होगा, भवावास, अद्धावास वगैरह जो हमने देखे थे उसके। और आयु का बंध होता है गुणित के लिए, आयु का बंध जघन्य योग में होगा, और क्षपित के लिए उत्कृष्ट योग में होगा। और 33 सागर की आयु वाले नारकी जीव के अंतिम समय में वे सबसे उत्कृष्ट होती है, इसलिए नारकी जीव के अंतिम समय में प्रत्येक शरीर द्रव्य वर्गणा सबसे उत्कृष्ट होती है। यह इस वर्गणा से वैकिरिक शरीर, तेजस शरीर और कार्मण शरीर तथा इनके विश्रसोपचय, इन छह पुंजों का ग्रहण होता है। जघन्य में हमने वो औदारिक शरीर लिया था अयोगी के अंतिम समय में, और यहाँ उत्कृष्ट में वो नारकी लेना है, इसलिए वैकिरिक शरीर को लेंगे। मध्य में इस वर्गणा के अनेक विकल्प है जिनका निर्देश मूल में किया ही है। यहाँ जघन्य वर्गणा एक परमाणु अधिक जघन्य वर्गणा, जघन्य वर्गणा में ही अनंत अनंत परमाणु है, उसमें एक परमाणु बढ़ा, दो परमाणु बढ़े, तीन परमाणु बढ़े इत्यादि क्रम से वृद्धि करते हुए उत्कृष्ट वर्गणा लाने की विधि जिस प्रकार मूल में बतलाई गई है उस प्रकार उसे जान लेना चाहिए। यानी वो अपकर्षण में कम परमाणु खिरा है इसलिए वो एक ज्यादा रहा, इस तरह से पहले उससे बढ़ाया था हमने, फिर योग के द्वारा वृद्धि कराई थी, इस तरह से अल्टरनेटली हमने देखे थे। पहले अंतिम समयवर्ती अयोगी जिनके ही नाना जीवों का अवलंबन लेकर जघन्य वर्गणा में परमाणुओं की वृद्धि की गई है, ये हमने देखा था ना, जो मिनिमम वाला लिया फिर उसमें और एक परमाणु अधिक वाला लिया इस तरह से। इसके बाद उपांत्य समयवर्ती अयोगी जिनका आश्रय करके वृद्धि कही गई है, और इस प्रकार पीछे लौटकर प्रथम समयवर्ती सयोगी जिन तक आकर वृद्धि का क्रम दिखलाया गया है। ये प्रथम समयवर्ती तक ही क्यों लिया अश्विन भाई, 12वें गुणस्थान, 11वें, 12वें, हाँ, क्योंकि 12वें तक तो निगोद है, 12वें के अंतिम समय तक है, तो उसको तो प्रत्येक शरीर वर्गणा नहीं कहेंगे, निगोद वर्गणा में चला जाएगा वो।
एक क्वेश्चन था, हाँ, ये जो यहाँ पे तीन शरीर का पुंज लिया, छह पुंज लिए,
तीन शरीर और उनके विश्रसोपचय,
छह पुंज लिए, केवली जो होते हैं उनके आरक शरीर का जो बंध छठे सातवें गुणस्थान में होता है वो कोई विशिष्ट जीव को नहीं भी हो सकता है, जैसे
तो
आहारक शरीर का पुंज नहीं लिया है,
आहारक शरीर है क्या वहाँ पर,
नहीं है
आहारक शरीर, किसके होगा
छठे गुणस्थान,
हाँ, तो वो पुंज वहीं पर होगा। आप जो कह रहे हैं उनकी सत्ता में आहारक शरीर नाम कर्म है, नाम कर्म कारमान शरीर पुंज में चला जाएगा,
वो कर्म अंश।
जब आहार शरीर बनता है तब उसको आहार शरीर में हम उसको पुंज कहेंगे, और केवल मात्र आहार शरीर का पुंज है वो अलग से। समझ में आई
बात? नाम कर्म,
हाँ, वो इसमें वो आहार शरीर नाम कर्म है, वो कारमन शरीर में चला जाएगा। हाँ देखो, इसके बाद हम पेज नंबर 79 पर पढ़ रहे थे, बीच में जो है ना, देव और देवों के बाद नारकी जीवों को स्वीकार करके प्रत्येक शरीर द्रव्य वर्गना अपने उत्कृष्ट विकल्प तक उत्पन्न की गई है। देवों को बाद में नारकियों को क्यों कहा? क्योंकि जहाँ वो संकलेश होते चले जाएंगे तो वहाँ उसका कर्म भी अधिक होगा, यानी उसमें जो उत्कर्षण ज्यादा होगा वगैरह वगैरह, उसको संचय अधिक रहेगा। प्रथम समयवर्ती सहयोगी जिनके बाद आहारक शरीर, क्योंकि बढ़ाते हुए ले जाना है ना पीछे, आहारक शरीर को क्यों ले? क्योंकि वहां तो अभी कर्म और भी ज्यादा है, क्योंकि वो छठे गुण स्थान में है और वो अयोगी थे। पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक और वायु का एक जीवों का ग्रहण इसलिए नहीं किया क्योंकि एक जीव की अपेक्षा इनके जो प्रत्येक शरीर द्रव्य वर्गना होती है उसका ग्रहण मध्यम विकल्पों में आ जाता है। यानी उसके वहां जो उत्कृष्ट तक ले गए थे उसके अंदर ही इन विकल्पों का अंतर्भाव हो जाता है, इसलिए इनकी अलग से रचना या अलग से उनका नाम नहीं लिया। अयोगी के पहले समय तक ले आए है, वहां से हमने फिर नारकी को लिया है, बीच वाले सारे जो विकल्प है वो अयोगी के मध्यम विकल्प में आ जाते हैं, ये इनका कहना है। यहाँ जगन्य वर्गना से उत्कृष्ट वर्गना लाते समय प्रत्येक स्थल पर गुणकार सब जीवों से अनंत गुना बतलाया है, सो यह कथन संभव सत्य की अपेक्षा किया गया जाना। क्या कहना चाहते हैं? अगर इतने इतने अलग अलग विकल्प बताएंगे तो कितनी बातें हो जाएगी, यानी ये पॉसिबिलिटी बताने के लिए उन्होंने संभव सत्य कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अब नीचे का पैराग्राफ 79। अभी नारकी के अंतिम समय में जो बताया था तो उसके बाद बादर पृथ्वी का एक पर्याप्त दो जीवों के अवलंबन लेकर प्रत्येक शरीर द्रव्य वर्गना को बताया था, यानी वो गुणित गोलमान की बात आई थी। यानी पहले में पहले जघन्य और उत्कृष्ट बताया और यहाँ बाकी भी वो गोलमान की भी बात करते हैं। पहले में पहले नारकी तक ले गए थे वो एक जीव की अपेक्षा बात थी, अब दो जीवों को इकट्ठा करके क्यों, जो दो जीवों को इकट्ठा स्कंद कैसे हो सकता है? फिर से नारकी के अंतिम समय में हम उत्कृष्ट को ले गए थे, एक जीव की अपेक्षा उत्कृष्ट कहा, कि दो जीवों का मिलकर भी हो सकता है प्रत्येक शरीर वर्गना, दो जीवों की मिलकर कह सकते हैं हम ये। देखो देखो, पृथ्वी का एक में क्या है, पृथ्वी का एक के एक इतने से मिट्टी में असंख्यात जीव होते हैं, तो दो पृथ्वी का एकों का मिलकर एक स्कंद हो सकता है कहीं पर? दो पृथ्वी का एकों के शरीर एक स्कंद रूप से हुए है, यहाँ हमको स्कंद किस रूप से हुआ है उसकी बात है, इसलिए वो दो पृथ्वी का एकों का आश्रय लेकर हम यहाँ कह सकते हैं, यही बात देख रहे। देखो सेकंड लाइन, पहला जो हमने नारकी को उत्कृष्ट जो वहां तक ले गए थे एक जीव की अपेक्षा बताया, अभी दो जीवों की बात। मादर पृथ्वी का एक पर्याप्त दो जीवों का आलंबन लेकर प्रत्येक शरीर द्रव्य वर्गना को प्राप्त करते हैं, ये समझ में है ना? ये क्या क्या बताना चाहते हैं? वहाँ एक जीव का था, एक जीव के तीन शरीर और तीन विसर सोच, और यहाँ दो जीवों को लिया, कौन ये कौन सा जीव लिया? पृथ्वी का एक, बादर पृथ्वी का एक, वो भी पर्याप्त। यथा यहाँ गुणित गोलमान विधि से आए हुए, क्योंकि गुणित कर्मांशिक वाला तो नारकी में हमने देख लिया था, यहाँ तो गुणित गोलमान यानी गुणित के तरफ वाला है, ऐसे दो बादर पृथ्वी का एक पर्याप्त जीव लो जिनके शरीर परस्पर में संबद्ध है, क्योंकि पृथ्वी का एक, अग्नि का एक, जल का एक, ये जो है उनके प्रत्येक शरीर वाले ही जीव है, परंतु उनके अनेक शरीर एक साथ जुड़े हुए स्कंद रूप से होते हैं, इसलिए यह परस्पर में संबद्ध है। और जिनमें से प्रत्येक के यानी एक एक जीव के प्रत्येक शरीर वर्गणा का संचय नारकी के उत्कृष्ट प्रदेश शरीर वर्गणा के संचय से आधा आधा है। क्या कहना चाहते हैं? जो नारकी को उत्कृष्ट देखा था, अभी उसके अपेक्षा से ये पृथ्वी का एक पर्याप्त अंक अगर हम देखते हैं, वो नारकी से आधा ही है, पर आधा और आधा मिलकर नारकी के समान एक हो जाता है, इतनी बात कहना चाहते हैं। अतएव इन दोनों जीवों के प्रत्येक शरीर द्रव्य वर्गणा का संचय अंतिम समयवर्ती नारकी जीव के वैकृत तेजस कारमान शरीर के संचय के समान होता है। यहाँ तक समझ में आई बात? वो नारकी का जो जीव लिया अंतिम समयवर्ती, उतने ही तीन शरीरों का संचय दो पृथ्वी कायकों के जुड़े हुए पृथ्वी कायकों के शरीर उनकी होते हैं, ये इतना कहना चाहते हैं। क्योंकि एक एक का देखेंगे तो उससे आधा है, तो दो आधे मिलकर एक हो जाता है। कहते यद्यपि वैकृत शरीर से औदारिक शरीर असंख्यात गुणाहीन होता है, तो भी इन दोनों संचयों के सदृश होने में कोई विरोध नहीं आता, क्योंकि यहाँ दो की मिलकर बात है और वहां कारमान और तेजस को भी कंसिडर करना ही है, क्योंकि तेजस और कारमान शरीरों के रहते हुए वैकृत शरीर के असंख्यात भाग मात्र औदारिक शरीर का द्रव्य उपलब्ध होता है। यानी वो वहां कंसिडर करना तेजस कारमन की मुख्यता है और उसके आधे आधे देखे है, उस अपेक्षा से इसका उनके समान होने में कोई विरोध नहीं है। अब क्या करेंगे इसके बाद? इनके तेजस कारमन औदारिक शरीर को बढ़ाते हुए ही ले पहले इन्हीं को बढ़ाएंगे, दो रहते हुए इनके बढ़ाएंगे। देखो पेज नंबर 18। अब इन दोनों जीवों में स्थित औदारिक तेजस और कारमन शरीर के छह पुंजों को मिला मनीषा बेन, हाँ, पूर्वोक्त विधि से तब तक बढ़ाना चाहिए। पूर्वोक्त क्या विधि है? उसका आकर्षण कम हुआ, इस तरह से हम ले सकते हैं उसको, एक एक परमाणु बढ़ाना, कि जब तक वे दो जीवों के योग्य उत्कृष्टपने को नहीं प्राप्त होते। यानी दो जीवों के योग्य जघन्य से लेकर दो जीवों के योग्य उत्कृष्ट तक ले गए हम, यहाँ तक समझ में आई बात? पुनः अभी क्या करना? तीन जीव लेना। बांदर पृथ्वी का एक पर्याप्त तीन ऐसे जीव लो जो परस्पर में शरीर से संबद्ध हो और जिनमें से प्रत्येक का प्रत्येक शरीर द्रव्य वर्गणा संचय दो बांदर पृथ्वी का एक पर्याप्त जीवों के उत्कृष्ट संचय के तीसरे भाग प्रमाणों। क्या कहना चाहते हैं? हमने दो शरीरों का उत्कृष्ट तक ले गए, अब दो शरीरों का मिलकर जितना उत्कृष्ट है उतना ही किसी के तीन शरीरों का मिलकर जघन्य होगा। इसलिए जो उत्कृष्ट है उसके वन थर्ड वाले तीन जीव लेना, तो उसकी टोटल उसके समान हो जाएगी। फिर उसमें क्या करना? फिर वृद्धि तक ले जाएंगे, फिर वो जब उत्कृष्ट को प्राप्त हुआ तो चार जीव लेंगे। इस तरह से हमको ले लेना है। अभी देखो बीच वाला छोड़ते, नीचे से पेज नंबर 80 पर नीचे से छठी सातवीं लाइन देखो, इस प्रकार सातवीं लाइन नीचे से सातवीं लाइन मिली, इस प्रकार 5, 6, 7, 8, 9, 10 से लेकर एक एक बढ़ाना। तत्प्रायोग्य यानी उसके योग्य पल्योपम के असंख्यात वे भाग प्रमाण बादर पृथ्वी का एक पर्याप्त जीवों के होने तक ले जाना चाहिए। जब हम कहते नहीं तो इतने से मिट्टी में असंख्यात जीव होते हैं, तो इसे उसके योग्य जितना असंख्यात होते है वहां तक ले जाना चाहिए। अभी इसको मैक्सिमम तक ले गए तो इनके औदारिक तेजस और कारमान शरीरों को क्रम से बढ़ाकर पुनः एक बंधन मध्य ने एक स्कंद रूप से हुए इतने बादर तेजस का एक पर्याप्त लीव लेने चाहिए, जो द्रव्य संचय की अपेक्षा एक बंधन बद्ध पल्योपम के असंख्यात्व भाग प्रमाण बादर पृथ्वी का एक पर्याप्त जीवों के समान हो, क्या कहते हैं? जो हमने पृथ्वी का एकों में जो उत्कृष्ट जो लिया पहले के असंख्यात विभाग प्रमाण जीवों के सारे तीनों शरीर और उसके विश्रेष उपचय, उतने ही अग्नि कायकों में उनके योग्य कुछ, उसके एक या दो जीव नहीं लिए, उनके योग्य जितने जीव हो गए, यानी एक बंधन बद्ध इतने तेजस कायिक लेना, उसकी संख्या यथा योग्य जितनी होगी वहां हमको ले गए और फिर उसको बढ़ाते बढ़ाते ले गए। कहां तक? लास्ट लाइन 80 पेज की। जब तक एक बंधन बद्ध बादर तेजस का एक पर्याप्त जीव आवली वर्ग से असंख्यात गुणे नहीं हो जाते। ये आवली वर्ग क्या होता है? पहले हमने पल्य का असंख्यात वा भाग देखा था, अब यहाँ कितने आवली वर्ग, यानी कितना अश्विन भाई?
आवली का वर्ग।
हाँ, आवली का वर्ग को क्या कहेंगे? का वर्ग,
वर्ग हाँ।
जगन्य
संख्या का वर्ग,
जगन्य असंख्यात संख्या। आवली इंटू आवली प्रतरावली होती है, जगन्य असंख्यात संख्यात है ना, जगन्य असंख्यात संख्यात, उससे असंख्यात गुणे होना चाहिए। क्योंकि वो जगन्य युक्ता संख्यात का वर्ग है ना, जो जगन्य असंख्यात संख्यात उससे भी असंख्यात गुणे नहीं हो जाते। तब तक इनकी संख्या और उसी क्रम से द्रव्य को बढ़ाते हुए ले जाना चाहिए, अथवा एक बंधन बद्ध तत्प्रायोग्य असंख्यात जीव लेने चाहिए। तत्प्रायोग्य लिख दिया उन्होंने, वो कितने हैं क्या उससे कोई बात नहीं, क्योंकि देवकृत झाड़ियों में लगी हुई अग्नि में, यानी वो अग्नि देवों ने लगाई ऐसा, बादर तेजस का एक पर्याप्त और अपर्याप्त जीवों के एक स्थान में एक बंधन बद्ध होने में कोई विरोध नहीं आता। जैसे अभी हम देख रहे हैं ना, अभी वो अनेक जंगलों में आग लगी है, कैलिफोर्निया में या अन्य अन्य बहुत जगह चल रही है आग, तो सबका मिलकर एक बंधन में एक पुंज दिख रहा है ना, वो पूरा एक स्कंद रूप से हो गया है। तो कहते इस तरह से उसका विचार करना, वो एक बंधन बद्ध मान सकते हैं। अब उसमें वो कहां होते क्या, वो प्रश्न पूछा गया, अभी आगे बढ़ते हैं। यानी उसको बढ़ाते 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 ले जाना चाहिए। अब उसके लास्ट पैराग्राफ 81 का, हमें तो 83 तक आए ना, वहां हमारी आज की बात शुरू होगी। ये तो हमने क्या पढ़ा था उसको देख रहे हैं। यानी हमने ये प्रत्येक शरीर वर्गना बढ़ाते 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 जगन्य वर्गना से उत्कृष्ट वर्गना असंख्यात गुणी होती है वह तक ले चले। अब नीचे का पैराग्राफ, पृथ्वी कायिक, जल कायिक, तेजस कायिक यानी अग्नि कायिक, वायु कायिक, देव, नारकी, आहारक शरीरी, प्रमत्त संयत, आहारक शरीर के बाद कॉमा नहीं चाहिए, आहारक शरीरी प्रथम प्रमत्त संयत, क्योंकि प्रमत्त संयत का जो उनका औदारिक शरीर है उसका पुंज अलग है, और ये जो बाहर निकला हुआ आहारक के साथ वहां जितना पुंज है उतना लेना है उसको, तो आहारक शरीरी प्रमत्त संयत, संयोग केवली और अयोग केवली, ये जीव प्रत्येक शरीर वाले होते हैं, क्योंकि इनका निगोद जीवों के साथ संबंध नहीं होता। यहाँ तक ख्याल में आएगा? विग्रह गति में विद्यमान बादर निगोद जीव और सूक्ष्म निगोद जीव प्रत्येक शरीर वाले नहीं होते।
विग्रह गति में विद्यमान मीन्स एक साथ जो दूसरी भाव में जा रहे हैं,
क्या देखो यहाँ उनका कहना क्या है, जो बादर निगोद है ना,
तो विग्रह गति में
बादर विगोद कैसे है, साधारण जीव साधारण जीव यानी अनंत जीवों का एक 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 शरीर है, परंतु अलग अलग जगह से आए हुए हैं, अभी उन्होंने शरीर धारण नहीं किया है। फिर से सुनना, जो निगोद जीव है विग्रह गति में है, विग्रह गति में यानी वो मोड़ वाली ले लो या मोड़ वाली हम लेते हैं, तो वहाँ वो अभी एक शरीर में कहाँ प्रवेश किया है? मान लेते ना ये एक शरीर में जीव आने वाले, लोकाकाश कहीं से भी एक शरीर में आने वाले है, आने के पहले वो कहाँ है इसमें? तो विग्रह गति में है, तो वहाँ उसको प्रत्येक शरीर कहो ना, ये उनका कहना है। क्यों प्रत्येक शरीर? कि उनके अवतारिक शरीर ग्रहण ही नहीं हुआ है, केवल उनके तेजस और कारमाण है और उनके अपना विश्व सोच है, यानी उनके चार ही पुंज है। तो ये चार पुंज को हम प्रत्येक शरीर वर्गना कह सकते हैं कि नहीं सकते, उनका प्रश्न है। देखो यहाँ कहते कि विग्रह गति में विद्यमान बादर निगोद और सूक्ष्म निगोद जीव प्रत्येक शरीर वाले नहीं होते, क्योंकि निगोद नाम कर्म के उदय के साथ गमन होने के कारण विग्रह गति में भी एक बंधन बद्ध अनंत जीवों का समूह पाया जाता है। क्या कहते हैं? वहां पर भी अनंत जीवों का एक बंधन में बद्ध होकर एक एक निगोद छुटा नहीं, वो भी अनंतों के समूह जाते यहाँ से वहां। यदि विग्रह गति में वर्तमान अशेष जीव प्रत्येक शरीर होते ऐसा माना जाए तो प्रत्येक वर्गणाएं अनंत हो जावे, परंतु ऐसा ही नहीं, क्योंकि वे असंख्यात लोक प्रमाण होती है, ऐसा अविरुद्ध भाषी आचार्यों के वचनों से जाना जाता है। देखो 82 पेज पर वहां शंका करके क्या शंका है? विग्रह गति में शरीर नाम कर्म का उदय ही नहीं है, ना प्रत्येक शरीर नाम कर्म का है ना साधारण का है, क्योंकि उसका उदय कहाँ पर होता है, कब होता है?
शरीर पर्याप्ति कैसे ले समय?
हाँ, यानी वहाँ जहाँ जन्म लेना है वहाँ पहुँचने पर पहला समय, भव ग्रहण का पहला समय, उसके पहले तो शरीर नाम कर्म का उदय ही नहीं है। इसलिए कहते वो किसी में भी अंतर्भूत नहीं होगी, न बादर वर्गना कहलाएगी न प्रत्येक शरीर वर्गना कहलाएगी। उसका समाधान उन्होंने क्या बताया, देखो यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि विग्रह गति में बादर और सूक्ष्म निगोद नाम कर्मों का उदय दिखाई देता है। देखो शरीर नाम कर्म का उदय तो वहां पहुंचने पर है, पर बादर या सूक्ष्म उसका तो उदय है, इसलिए वहां पर भी बादर और सूक्ष्म निगोद द्रव्य वर्गणाएं उपलब्ध होती है, और इनके इनसे अतिरिक्त जिन्होंने शरीरों को ग्रहण कर लिया है या नहीं ग्रहण किया है वे सब जीव प्रत्येक शरीर वर्गना वाले होते हैं, और निगोद में ही अनंत जीव है, बाकी तो सब जीव असंख्यात है, इसलिए प्रत्येक शरीर द्रव्य वर्गनाओं को असंख्यात में ले लिया है। अभी उस पर भी शंका समाधान है, कितने असंख्यात होते हैं वगैरह वगैरह। तो लास्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे 82 का समाधान का, कि ईषद प्रागभार शिला में पूरी पृथ्वी मिलकर एक बंदर मध्य स्कंद है ना, एक जल बिंदु में, एक अंगारे में और जल के एक बुलबुले में अलग अलग असंख्यात लोक प्रमाण जीवों के होने पर भी वहाँ मात्र तेजस का एक पर्याप्त जीव ही एक बंधनबद्ध उपलब्ध होते हैं। यानी उसका अर्थ क्या है, भले वहाँ असंख्यात जीव है परंतु उनका सबका मिलकर एक एक स्कंद, ये जुदे जुदे स्कंद मिलकर वहाँ वो पृथ्वी दिखाई दे रही है। नहीं समझे?
जुड़ा हुआ सब एक स्कंद,
उनके जुड़े हुए स्कंद, जैसे हम कहेंगे मान लेते ना, हमने वो शक्कर हमने देखी बरनी में भरी हुई, तो एक एक शरीर एक शक्कर का एक एक दाना जो है वो एक स्कंद कहो, तो ऐसे अनेक स्कंद है ना वहां पर, इस तरह से यहाँ वो एक बंधन बद्ध स्कंद जुदे जुदे अलग अलग होते हैं, इनको एक बंधन बद्ध स्कंदों की बात करनी है। हाँ, अभी यहाँ आते 83 पर शंका पूछी गई, एक बंधन बद्ध इतने ही जीव होते हैं, अधिक नहीं, ये कैसे जाना? तो कहते अविरुद्ध आचार्यों के वचनों से जाना जाता है और वे तेजस कायिकों में ही बहुत उपलब्ध होते हैं, अन्यत्र नहीं उपलब्ध होते। क्या कहते हैं? तेजस कायिक में जो एक बंधन बद्ध जीव है उन्हीं की संख्या मैक्सिमम है, ये कहना चाहते हैं। इसलिए लता दाह आदि में एक अंगारा ही प्रधान किया है, वहां एक अंगारा ने एक वो स्कंद रूप से जो पाया जाता है उसको लिया। गुणित कर्मांशिक जीव यदि बहुत होते हैं तो आवली के असंख्यात वे भाग प्रमाण ही होते हैं, बाकी के सब गुणित कर्मांशिक नहीं होते। जब हम एक बंधन बद्ध में देखना चाहते हैं तो जहाँ गुणित कर्मांशिक होगी उनके कर्म परमाणु अधिक मात्रा में होगी, परंतु कहते एक स्कंद में अगर गुणित कर्मांशिक की बात करेंगे तो वो भी आवली के असंख्यात विभाग से ज्यादा नहीं होगे, ये कहना चाहते हैं।
क्या क्वेश्चन था यहाँ पे, ये पर्याप्त जीव क्यों लिया? पर्याप्त जीव वहाँ पे तो
कहाँ की बात है?
ये जो 82 पेज पे लास्ट लाइन में बताया है,
82
तेजस का एक पर्याप्त जीव ही एक बंधन बद्ध उपलब्ध होते हैं,
क्योंकि पर्याप्तों में उसके जो कर्माणु वर्गना जो है ना गुणित में लेना था ना हमको,
गुणित कर्मांशिक क्या पर्याप्त उत्पन्न नहीं होता?
होते हैं, नहीं की बात कहाँ, बहुत बार पर्याप्तों में लेना है, पर्याप्त इसलिए वहाँ योग ज्यादा है, योग ज्यादा है तो परमाणु अधिक ग्रहण होते हैं, ये तो कंडीशन है मूल में, गुणित के यही कंडीशन है। देखो अभी ये पूरा जो हमने पढ़ा ना, ये 17वीं वर्गणा, कौन सी नाम क्या था? प्रत्येक शरीर वर्गणा की बात चल रही है ना, अभी इसका विशेषार्थ जो अभी हमने देखा उसी की बात फिर दोबारा वो बताएंगे, तो और हमारा क्या पढ़ाता है वो ख्याल में आ जाएगा। एक पैराग्राफ है उसका विशेषार्थ का, पहले एक जीव की अपेक्षा उत्कृष्ट प्रत्येक शरीर द्रव्य वर्गणा कहे आए है, वो नारकी में लिया था, उत्कृष्ट की बात है, जगन्य सहयोगी के अनियोगी के अंतिम समय में देखा था, वो भी गुणित सॉरी क्षपित कर्मांशिक था, और ये वाला गुणित कर्मांशिक नारकी के अंतिम समय में। यहाँ एक बंधन बद्ध नाना जीवों की अपेक्षा यह वर्गणा बतलाई गई है। पहले हमने एक बंधन बद्ध दो जीव तीन जीव संख्या जीव असंख्या जीव देखे थे, उसमें भी पृथ्वी का एक अग्नि का एक वगैरह वगैरह की चर्चा की थी, तो यहाँ कहते एक बंधन बद्ध नाना जीव यानी अनेक जीव उसकी अपेक्षा ये वर्गणा है, जिनका शरीर पृथक पृथक अर्थात प्रत्येक होकर भी परस्पर जुड़ा हुआ होता है, वे एक बंधन बद्ध जीव माने गए हैं। ये समझ में आई ना, है तो प्रत्येक शरीर ही परंतु उनके शरीर परस्पर से जुड़े हुए हैं। ऐसे पृथ्वी का एक जीव पल्ले के असंख्यात वे भाग प्रमाण हो सकते हैं और अग्नि का एक जीव इनसे भी अधिक हो सकते हैं, जो एक पिंड में बंधन बद्ध रहते हैं और इससे इन सबकी मिलकर एक प्रत्येक वर्गणा बनती है। अभी समझ में आई ना बात, वहाँ कितने नंबर ऑफ जीव है उसकी अपेक्षा से उसको कहेंगे, वो कितना बड़ा साइज है उससे कुछ लेना देना नहीं है। साधारण शरीर से इस प्रत्येक शरीर में बहुत अंतर होता है, वहाँ शरीर एक ही होता है किंतु यहाँ सबसे सबके अलग अलग शरीर होते हैं। साधारण में क्या है, औदारिक शरीर एक ही है मात्र प्रत्येक शरीर एक दूसरे से संबद्ध रहते हैं और इसी से इन्हें एक बंधन बद्ध मानकर इनकी एक वर्गणा मानी गई है। एक तेजस का एक जीव के औदारिक तेजस और कारमान शरीर तथा इनके विशेषोपचयों का जितना उत्कृष्ट संचय हो सकता हो उसे, क्योंकि वो एक जीव के इतने होते ना, एक जीव के मैक्सिमम लिए, उसको असंख्यात गुणित आवली वर्ग से गुणित करने पर, यानी आवली वर्ग को असंख्यात गुणा करके उससे गुण करना, या तत्प्रायोगी असंख्यात से गुणित करने पर, वो आवली वर्ग का असंख्यात गुणा वाला गुणकार करो या तत्प्रायोगी लिखो, उत्कृष्ट प्रत्येक शरीर द्रव्य वर्गणा का प्रमाण आता है। यहाँ अंतिम समयवर्ती नारकी के उत्कृष्ट संचय से आगे की प्रक्रिया द्वारा इसी वर्गणा के उत्पन्न करने की विधि कही गई है। वहाँ एक जीव था, यहाँ अनेक जीवों का मिलकर प्रत्येक शरीरों का स्कंद लिया था। यह नाना प्रत्येक शरीर द्रव्य वर्गणा रूप होकर भी एक बंधन बद्ध होने से एक प्रत्येक शरीर द्रव्य वर्गणा मानी गई है, यह उक्त कथन का तात्पर्य। वहाँ भले जीव अनेक असंख्यात है परंतु उन सबका मिलकर वो स्कंद एक हो गया है, इसलिए उसको एक बंधन बद्ध प्रत्येक शरीर वर्गणा कही। अब आगे बढ़ते हैं 92 नंबर का सूत्र। पत्तेय शरीर दव्य वग्गणानम वरी ध्वसुन्न दव्य वग्गणानाम। प्रत्येक शरीर द्रव्य वर्गणाओं के ऊपर ध्रुव शून्य वर्गणा है, ये दो दूसरी बार आई ना ध्रुव शून्य। उत्कृष्ट प्रत्येक शरीर वर्गणा में एक अंक के मिलाने पर दूसरी ध्रुव शून्य वर्गणा संबंधी सबसे जघन्य ध्रुव शून्य द्रव्य वर्गणा होती है। पहले हमने प्रत्येक शरीर के पहले एक ध्रुव शून्य वर्गणा देखी 16 नंबर पर, ये 17वीं प्रत्येक शरीर थी। अब फिर ध्रुव शून्य आई, इसलिए उसके 2 नंबर की ध्रुव शून्य कहा। देखो उत्कृष्ट प्रत्येक शरीर द्रव्य वर्गणा में एक अंक के मिलाने पर दूसरी ध्रुव शून्य वर्गणा संबंधी सबसे जघन्य ध्रुव शून्य द्रव्य वर्गणा होती है। इसका अर्थ समझ में है ना, ये जो 2 नंबर की ध्रुव शून्य वर्गणा है यानी टोटल वर्गणाओं में इसका नंबर 18वां है, उसका जघन्य वाला जो भेद है वो कब होगा, जो हमने 17वीं जो प्रत्येक शरीर वर्गणा का जो उत्कृष्ट था प्रमाण उसमें एक परमाणु मिलाओ, अनंतर एक एक अधिक के क्रम से अनुपूर्वी से सब जीवों से अनंत गुणी ध्रुव शून्य वर्गणाओं के जाने पर उत्कृष्ट ध्रुव शून्य वर्गणा उत्पन्न होती है। यानी उसके एक एक परमाणु से बढ़ते हुए सारे भेद हो जाने पर उत्कृष्ट ध्रुव शून्य वर्गणा होती है। हाँ, वह जघन्य वर्गणा से अनंत गुणी है और गुणकार क्या है, सब जीवों का असंख्यात वा भाग प्रमाण गुणकार है।
तो ये 18वीं जो ध्रुव शून्य वर्गणा है उसके भेद इत्त हो जाएगा ना जीवों के असंख्यात विभाग को,
है ना, वो जघन्य से उत्कृष्ट का गुणकार है। वो भी अनंत में है, वो अनंत कितना अनंत है, तो जीव राशि का असंख्यात वा भाग वाला अनंत है। यथा उसको बता रहे, सब जीव राशि को असंख्यात लोक प्रमाण शरीरों से भाजित कर पुनः अवली के असंख्यात विभाग से असंख्यात लोकों से और एक जीव के औदारिक तेजस्वर कार्मन शरीर के द्रव्य से गुणित कर जो लब्ध आवे, पहले उसको भाग दिया और फिर उसको गुणा किया, उसमें से एक कम करने पर उत्कृष्ट ध्रुव शून्य द्रव्य वर्गणा होती है। एक कम इसलिए किया कि आगे वाला जो बादर निगो द्रव्य वर्गणा है उसमें से एक कम करना था। पुनः इसे एक अधिक उत्कृष्ट प्रत्येक शरीर द्रव्य वर्गणा से भाजित करने पर सब जीव राशि का असंख्यात्व भाग आता है, इसलिए पहले कहा गया गुणकार ही होता है ऐसा यहाँ ग्रहण करना चाहिए। ये गुणकार को सिद्ध करने के लिए उन्होंने उल्टा पुल्टा करके फिर समझाया है। यह 18वीं वर्गणा है, एकांतवादी दृष्टि के समान यह सदाकाल शून्य रूप से अवस्थित है। क्या कहा? एकांतवादी दृष्टि है ने जो कहे, जो मान्यताएं हैं वो कैसी है? बिल्कुल गलत है ना। यह सदाकाल शून्य रूप से अवस्थित है। अब 93 नंबर,
इसे क्यों बताया एकांतवादी दृष्टि के समान सदाकाल शून्य रूप से अवस्थित है? तो इसे उसका निषेध कर रहे हैं कि
एकांतवादी दृष्टि का कोई विषय होता है क्या?
नहीं,
ऐसी कोई चीज ही नहीं है। जो एकांतवादी की जो मान्यता है ऐसी कोई चीज ही इस विश्व में उपलब्ध नहीं है। ऐसे ऐसे द्रव्य वर्गना भी हमेशा उपलब्ध ही नहीं है, कोई है ही नहीं है, एग्जिस्टेंस में ही है, नहीं है। शास्त्र में आता है ना, मिथ्या ज्ञान का कोई विषय ही नहीं है इस विश्व में। नहीं समझे? देखो, आकाश नाम की वस्तु है इस विश्व में है। अरे आकाश नहीं है,
आकाश द्रव्य
है। आकाश द्रव्य ना, फूल फूल है,
आकाश का फूल नहीं।
अरे हमने फूल है कि नहीं पूछा? यानी जो जो नाम है वैसी चीज होती है, पर आकाश का फूल होता है और मेरा घर होता है, होता है। इस विश्व में मैं नाम के मैं हूँ, घर नाम की चीज है, मेरा घर कहाँ से आया? आकाश का फूल नहीं होता तो मेरा घर कैसा होगा? मेरा घर, मेरा बच्चा, मेरा पैसा, ये क्या है? सब कहना बात अलग है, पर ये मान्यता की बात है नहीं, दृष्टि की बात चल रही। कथन होते हैं ऐसे? हाँ हाँ, लौकिक में होते ना कि दो नया है ना, दो नए पर चलता है सारा। हाँ, ये व्यवहार चलता है ना दो नए पर, तो व्यवहार नए का कथन भी होगा उसमें, वो लौकिक व्यवहार चलेगा, परंतु हमें दृष्टि की बात यहाँ चल रही है। देखो 93 नंबर, दुवसुन्न दव्व वग्गणानम वरी बादर निगोद दव्व वग्गणानाम। देखो अभी यहाँ पर भी उनके वो जुड़ा हुआ स्कंद होना चाहिए। पहले मैंने प्रत्येक शरीर की बात देखी थी, प्रत्येक शरीर में सयोगी अयोगी तो लिया ही लिया, आहारक को भी लिया, वो सारे मध्य के भेद में आ गए, देव नारकियों के भी लिया, फिर पृथ्वी कायकों के वगैरह वो सब ले लिया। अब आगे बढ़ते कि ध्रुव शून्य द्रव्य वर्गणाओं के ऊपर बादर निगोद द्रव्य वर्गणा है, ये 19 नंबर की है ना?
ये ऊपर सूत्र पढ़ने का
है। पढ़ा ना, दुव सुन्न दव्व वग्गणानम वरी बादर निगोद दव्व वग्गणानाम, पढ़ा था। उत्कृष्ट ध्रुव शून्य द्रव्य वर्गणा में एक अंक के मिलाने पर, ये ध्रुव शून्य तो है ही नहीं है, पर उसका जो प्रमाण था उसमें एक अंक मिला दिया। सबसे जघन्य बादर निगोद द्रव्य वर्गणा होती है, शंका वह कहाँ दिखाई देती है? समाधान क्षीण कषाय के अंतिम समय में। देखो हमने क्या देखा था, अयोगी के अंतिम समय से लेकर सयोगी के प्रथम समय तक नीचे आए थे हम, प्रत्येक शरीर के लिए। एक समय नीचे चले जाओ तो वहां अभी बारहवें के अंतिम समय में जो अंतिम लॉट है निगोद का, वो जाने वाला है। पहले तो उत्पन्न होना घटा था, फिर जितना जितना उत्पन्न हुआ था अपनी अपनी आयु पूरी करके गया था। ये अंतिम ऐसा लॉट है, वहाँ जो अंतिम समय, जो उनके आयु प्रमाण पहले उत्पन्न हुए थे, अब वो अंतिम समय में वो पूरा लॉट चला जाएगा, परंतु वहाँ है ना, इसलिए उसको कहा वो एक बंधन बद्ध क्षीण कषाय के अंतिम समय में उनकी जो वर्गणा जो है वो मिनिमम है, जघन्य है। किस प्रकार के क्षीण कषाय में होती है, ऐसा प्रश्न करने पर उत्तर देते हैं, जो जीव क्षपित कर्मांशिक विधि से आकर, जाकर नहीं आकर, जाकर लिखा है, अच्छा ऊपर लिखो, जो जीव खवित कर्मांशीय लक्षणेन आगंतुण आकर, पूर्व कोटि की आयु वाले मनुष्यों में उत्पन्न हुआ, अनंतर गर्भ से लेकर 8 वर्ष और अंतर्मुहूर्त का होने पर सम्यक और संयम को युगपत ग्रहण करके पुनः कुछ कम पूर्वकोटि काल तक कर्म की उत्कृष्ट गुणश्रेणी निर्जरा करके सिद्ध होने के लिए अंतर्मूर्त काल अवशेष रहने पर क्षपक श्रेणी पर आरोहण किया। देखो यहाँ केवल यानी जल्दी हुआ ऐसा नहीं कहा है,
अंतर्मूर्त
बाद में अंतर्मूर्त रखकर वो श्रेणी पर आरोहण किया। अनंतर क्षपक श्रेणी में सबसे उत्कृष्ट विशुद्धि के द्वारा कर्म निर्जरा करके क्षीण कषाय हुए इस जीव के प्रथम समय में अनंत बादर निगोद जीव मरते हैं, दूसरे समय में विशेष अधिक जीव मरते हैं। कितने विशेष अधिक जीव मरते हैं? कहते प्रथम समय में मरे हुए जीवों के प्रमाण में आवली के असंख्यातवे भाग का भाग देकर देने पर जो एक भाग लब्ध आवे उतने विशेष अधिक जीव मरते हैं, यानी उसकी संख्या बढ़ती चली जाती है मरने वालों की। इसी प्रकार तीसरे आदि समयों में विशेष अधिक जीव मरते हैं। यह क्रम क्षीण कषाय के प्रथम समय से लेकर आवली पृथक्त्व काल तक चालू रहते हैं, यानी कुछ आवलियों तक विशेष अधिक मरेंगे। इसके आगे संख्यात्वा भाग अधिक मरते हैं, यानी मरने वालों की संख्या बढ़ गई अभी। और यह क्रम क्षीण कषाय के काल में आवली का असंख्यात्वा भाग काल शेष रहने तक चालू रहता है। इसके आगे लगे हुए समय में असंख्यात गुणे जीव मरते हैं। देखो पहले कितना था, विशेष अधिक, फिर संख्यात्वा भाग अधिक, यानी संख्या बढ़ गई। अब कहते असंख्यात गुणे है ना। इस प्रकार क्षीण कषाय के अंतिम समय तक असंख्यात गुणे जीव मरते हैं और गुणकार सर्वत्र पल्लवम के असंख्यातवे भाग प्रमाण है। अब कहते विशेष अधिक मरने के अंतिम समय में मरने वाले जीवों के प्रमाण को तत्प्रायोग्य पल्लवम के असंख्यातवे भाग से गुणित करने पर गुणश्रेणी क्रम से यानी गुणित क्रम से मरने के प्रथम समय में मरे हुए जीवों का प्रमाण होता है, ऐसा यहाँ ग्रहण करना चाहिए। देखो क्या कहना है, पहले कैसा लिया था, विशेष अधिक, उसके बाद संख्यात्वे भाग अधिक, पर यहाँ जब वो असंख्यात गुणा का कैसा प्रमाण लाना है तो विशेष अधिक का जो अंतिम समय था वहां जो समय प्रमाण था जीवों का उसको पल्ले के असंख्यात विभाग से गुणा करना है। तो गुणित क्रम से मरने वालों की संख्या पहले समय में आती है। इसी प्रकार आगे भी क्षीण कषाय के अंतिम समय तक जानकर कथन करना चाहिए। यह गुणकार प्रत्येक समय में मरने वाले जीवों का ही कहना चाहिए, पुलवी जीवों का नहीं। क्या कहते हैं, क्योंकि अनेक ये तो मरने वाले जीवों की संख्या है, ऐसे एक शरीर में कितने ही जीव है और उसमें ऐसे असंख्यात शरीरों की मिलकर पुलवी होती है। हमने देखा ना ऊपर से नीचे स्कंद अंडर आवास पुलवी और देह, यानी बंच ऑफ देह जो होता है असंख्यात देहों का समूह उसको पुलवी कहते हैं। यहाँ पुलवी की संख्या नहीं बतानी है, जीवों की संख्या बतानी है। यह किस प्रमाण से जाना जाता है? समाधान, आगे कहे जाने वाले चूलिका के क्षीण कषाय चरिम समय आवलियाय असंख्य यदि भागमित निगोनाणम इस सूत्र से जाना जाता है, यानी उसके अंतिम समय में आवली के असंख्यातवे भाग मात्र निगोद। ऐसा यहाँ निगोद किन्हें कहते हैं? तो कहते पुलवियों को निगोद कहते हैं। अलग अलग अपेक्षाओं से उसका कथन आता है, उसको पुलवियों को भी निगोद कहेंगे। अब यहाँ पर पुलवियों के स्वरूप का कथन करते हैं। अब यहाँ बता रहे, देखो यथा स्कंध अंडर आवास पुलवी और निगोद शरीर ये पांच होते हैं, कभी कभी तो हमने देखा ना प्रत्येक शरीर को भी कहीं कहीं निगोद कहने की हमने पद्धति देखी थी प्रतिष्ठित को भी, यहाँ जहाँ जिस अपेक्षा से बात है वहाँ उसको लेना है। उनमें से जो बादर निगोदों का आश्रयभूत है, बहुत वखारों से युक्त है तथा वलजंत वाणी कच्छउड़ समान है। वलजंत वाणी क्या होता है, ऊपर क्या है, वलंजु कच्छ उड़ कुआ वर भाग समान बताएंगे उसको। तो कहते बहुत वखारों से युक्त और वलजंत वाणी कच्छ उड़ समान है, ऐसे मूली थुअर, ये थुअर समझते है एलोवेरा,
हाँ,
थोर और आर्द्रक आदि संज्ञा को धारण करने वाला स्कंद कहलाता है। क्योंकि हमने देखे ना मूली नाम का एक पीस दिखता है ना, वो स्कंद है, पूरी कैक्टस, पूरा कैक्टस, उसमें आजकल एलोवेरा मैक्सिमम यूज होता है, इसलिए अदरक यानी आदू, आदू आल मराठी में उसको आल कहते हैं, अदरक। देखो बहुत वखारों से युक्त है, अभी वो बताएंगे ना किसकी बात है, यहाँ पर स्कंदों की बात है, यानी वो स्कंदों में भी और पार्ट्स हो गए अलग अलग बीच में। वे स्कंद, टोटल स्कंद जो है असंख्यात लोक प्रमाण होते हैं, क्योंकि बादर निगोद प्रतिष्ठित जीव असंख्यात लोक प्रमाण पाए जाते हैं, जिन प्रत्येक वनस्पतियों के आधार से निगोद रहते हैं उनको क्या कहेंगे,
बादर
निगोद प्रतिष्ठित। वो टोटल इस विश्व में कितने हैं तो असंख्यात लोक प्रमाण है, तो उसको स्कंद कहेंगे, क्योंकि उनके शरीर आपस में जुड़े होकर एक स्कंद बना है और उनके प्रत्येक यानी प्रत्येक जो वनस्पति है उसकी उसके आधार से निगोद रहते हैं, सबको मिलकर स्कंद कह दिया। जो उन स्कंदों के अवयव है, अब ये जो एक एक नाम बताए ना, वो अंडर है, आवास है, पुलवी वगैरह, तो उन स्कंदों के अवयव है, और जो वलंजु कच्छ उड़ के पूर्वापर भाग के समान है उन्हें अंडर कहते हैं। जो अंडर के भीतर स्थित है तथा कच्छ उड़ अंडर के भीतर स्थित वखार के समान है उन्हें आवास कहते हैं। और जो एक मिनट, अंडर असंख्यात लोक प्रमाण होते हैं तथा एक एक अंडर में असंख्यात लोक प्रमाण आवास होते हैं। जो आवास के भीतर स्थित है और जो कच्छ उड़ अंडर वखार के भीतर स्थित पिशवियों के समान है उन्हें पुलवी कहते हैं। एक एक आवास में असंख्यात लोक प्रमाण होती है पुलवी, तथा एक एक आवास की अलग अलग एक एक पुलवी में असंख्यात लोक प्रमाण निगोद शरीर होते हैं। हम कहते ना, हम उसको इमेजिन करेंगे, अभी हम कोई एक वृक्ष में भी जो बड़ी शाखा है उसमें क्या है और छोटी शाखाएं लगी है उसमें, एक एक में अनेक गुच्छे लगे हैं, वो गुच्छे में एक एक जैसे हम अंगूर के वगैरह एक एक पीस जुदा जुदा है ना, परंतु वो सब मिलकर एक इसमें लगे हुए हैं। इस तरह हम थोड़ा इमेजिन, देखो एक बड़ा होता है ना गुच्छा, उसमें भी छोटे छोटे गुच्छे ऐसे अलग अलग, एक पाँच दस अंगूर लगे हुए, और वो भी एक शाखा से वो ये सबका मिलकर एक पूरा दिखता है हमको। इस तरह से थोड़ा इमेजिन कर सकते हैं और कुछ नहीं, तो एक बंधन में बद्ध है, बस इतना लेना है उसके। हाँ, अभी क्या कहते हैं, एक एक कुलवी में असंख्यात लोक प्रमाण निगोद शरीर होते हैं, जो कि मिला नीचे से छठी लाइन है टोटली, जो कि औदारिक तेजस और कार्मण पुद्गलों के उपादान कारण होते हैं, और जो कच्छ उड़ अंडर व खार पुलवी के भीतर स्थित ये कच्छ उड़ मिले स्कंद को कच्छ उड़ कहा क्या अंडर वखार आवास और पुलवी उसी को कहा है। फिर से नीचे से उस पैराग्राफ के नीचे से पांचवी लाइन में फिर पढ़ती हूँ। एक एक आवास की अलग अलग एक एक पुलवी में असंख्यात लोक प्रमाण निगोद शरीर होते हैं जो कि औदारिक तेजस और कार्मण पुद्गलों के उपादान कारण होते हैं और जो कच्छ उड़ अंडर वखार पुलवी के भीतर स्थित द्रव्यों के समान अलग अलग अनंतानंत निगोद जीवों से आपूर्ण होते हैं। अथवा तीन लोक भरत अब ये जो उदाहरण है ना स्कंद अंडर आवास तो स्कंद की कंपैरिजन के तीन लोक में बहुत क्षेत्र है उसमें से एक भरत क्षेत्र है। भरत क्षेत्र में अनेक जनपद है एक एक जनपद में अनेक ग्राम है। अभी जनपद के बदले आप जिला समझो एक भारत एक देश है तो उसमें तो भारत देश में कितने प्रांत अलग अलग है महाराष्ट्र गुजरात मध्य प्रदेश स्टेट्स अलग अलग है और उसमें जिले कितने हैं एक एक स्टेट में कितने सारे जिले हैं उसमें ग्राम और पूर्व के समान स्कंद अंडर आवास पुलवी और शरीर होते हैं इसे यहाँ ग्रहण करना चाहिए। पुनः यहाँ पर क्षीण कषाय जीव के शरीर की स्कंद संज्ञा है क्योंकि वह असंख्यात लोक प्रमाण अंडरों का आधारभूत है क्योंकि इसका मिलकर एक स्कंद रूप हो गया ना वहां पर क्षीण कषाय गुण स्थान में वहां जो जीव का कार्मण शरीर है तेजस शरीर है औदारिक शरीर है और वो औदारिक शरीर के आधार से ये सब जीव रहते हैं निगोद के शरीर होते हैं तो वहां उसकी स्कंद संज्ञा है क्योंकि वह असंख्यात लोक प्रमाण अंडर उनका आधारभूत है। देखो उसमें असंख्यात लोक प्रमाण अंडर हो गए और एक एक अंडर में वहां अंडरों के भीतर स्थित हुए अनंतानंत जीवों में से अभी डायरेक्ट उन्होंने अनंतानंत जीव लिए परंतु अंडर आवास पुलवी सब समझना उसके उनमें से वो अनंतानंत जीव है उनमें से शुक्ल ध्यान के द्वारा प्रति समय असंख्यात गुणे श्रेणी रूप से यानी उनका प्रमाण एक समय में जितने जीव मरकर चले गए असंख्यात गुणे मरते हैं जीवों के मरने पर क्षीण कषाय के अंतिम समय में मरने वाले जीव अनंत होते हैं। देखो फिर भी अनंत जीव वहां पर है इतने होते हुए भी पहले द्विचरम समय में मरने वाले जीवों से असंख्यात गुणे होते हैं। गुणकार क्या है पल्लवपम का असंख्यात वा भाग गुणकार है यानी द्विचरम में जितने मरते हैं
उससे असंख्यात
है ना तो उनके इतने हैं तो हमारे कितने हो गए तो ये आपका शरीर है कि उनका है जरा नक्की करो अनंतान कितने अनंतानंत का समूह है यहाँ पर यहाँ तो हम तो चले जाएंगे इसको छोड़कर तब भी वो यहीं रहेंगे नहीं नहीं समझे तो उनका है क्या आपका है नक्की करो ना नहीं समझे आप क्या कहते हैं जहाँ हम रहते घर हमारा है
घर छोड़ के जाते
अरे धर्मशाला को रहते हम धर्मशाला में रहे महीने तक और छोड़ के चले गए तो वहाँ दूसरे रह रहे ना तो तुम्हारी धर्मशाला कहलाएगी क्या जब तक रहते हम कहेंगे हमारे रूम में हमको जाना है हमने ताला भी लगाया मेरे को थोड़ा भेद ज्ञान तो करे अभी देखो गुणकार क्या है पल्लवपम का असंख्यात वा भाग गुणकार है। अब शंका बड़ी चौड़ी बड़ी शंका है क्षीण कषाय के अंतिम समय में पुलवियां आवली के असंख्यात विभाग प्रमाण होती है, ऐसा सूत्र में कहा है।
नंबर ऑफ पुलवी की बात है,
यदि पूर्वोक्त तो गुणकार पुलवियों का होता है तो यह कथन घटित नहीं होता, क्योंकि पुलवियों की बात करेंगे तो एक एक पुलवी में इतने देह और इसमें एक एक देह में अनंत जीव है। तो उनका कहना क्या है, क्योंकि द्विचरम समय में मृत जीवों की आवली के असंख्यात विभाग मात्र पुलवियों को पल्लवों के असंख्यात विभाग से गुणित करने पर क्षीण कषाय के अंतिम समय में पल्लवों के असंख्यात विभाग मात्र पुलविया उपलब्ध होती है। पूरा शंका पढ़ेंगे तो फिर क्या कहना चाहते हैं समझ में आ जाएगा। एक एक स्कंध में अंडर असंख्यात लोक प्रमाण होते हैं तथा एक एक अंडर में आवास असंख्यात लोक प्रमाण होते हैं और एक एक आवास में पुलविया असंख्यात लोक प्रमाण होती है, इस प्रकार पहले कहे आए हैं। इसलिए क्षीण कषाय के अंतिम समय में आवली के असंख्यात वे भाग मात्र पुलविया है, यह वचन घटित नहीं होता है। वहां की पुलवियों का असंख्यात बहुभाग क्षीण कषाय गुणस्थान में नष्ट हो गया है, यह कहना युक्त नहीं है, क्योंकि अपने शरीर में स्थित निगोद जीवों को पल्लवपुम के असंख्यात भाग से भाजित कर वहां लब्ध एक भाग के नष्ट होने पर पुलवियों के असंख्यात बहुभाग का विनाश मानने में विरोध आता है। अंतिम समय में मरे हुए जीव द्विचरम आदि समयों में मरे हुए जीवों के असंख्यात भाग प्रमाण होते हैं, यह कहना भी ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि वो गुणित प्रमाण में मरते बताया था, क्योंकि इस कथन का गुणश्रेणी क्रम से मरण प्ररूपणा के साथ विरोध आता है। अब ये जो पूरी शंका है उसके पुलवियों के प्रमाण की बात उसने चर्चा उठाई थी, तो इस शंका का समाधान करते हैं। क्षीण कषाय जीव के शरीर में यानी बारहवें गुणस्थान वाले की उत्कृष्ट और जघन्य पुलविया आवली के असंख्यात वे भाग मात्र ही होती है,
यानी वहां असंख्यात लोक प्रमाण नहीं होती, ये कहना चाहते।
एक बंधनबद्ध पुलविया असंख्यात लोक मात्र कहीं भी नहीं होती, बंधनबद्ध की बात है ना। यहां जगन्य का अधिकार होने से आवली के असंख्यात भाग मात्र ही पुलविया होती है, जगन्य का यहाँ अधिकार है, ऐसा ग्रहण करना चाहिए। पूर्वोक्त वचन के साथ विरोध आता यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि क्षीण कषाय को छोड़कर अन्य स्कंद का अवलंबन लेकर वहां कथन किया है। हमारे आपके अन्य जीवों की बात करेंगे या जो प्रतिष्ठित प्रत्येक की बात करेंगे तो वहां कहेंगे कि पुलवी भी असंख्यात लोक, जैसे एक एक स्कंद में असंख्यात लोक प्रमाण अंडर, उसमें आवास, उसमें पुलवी है, यानी एक एक आवास में असंख्यात लोक प्रमाण पुलवी होगी, परंतु यह टोटल भी आवली के असंख्यात वे भाग प्रमाण होती है। कहाँ पढ़ रहे थे?
तीसरी लाइन।
इस यहाँ हाँ 88 ना। पूर्वोक्त वचन के साथ विरोध आता है कहना ठीक नहीं, क्योंकि क्षीण कषाय को छोड़कर अन्य स्कंध का अवलंबन लेकर वहां कथन किया है और सब स्कंधों में पुलविया असंख्यात लोक मात्र ही होती है, ऐसा कोई नियम नहीं, यानी हर एक स्कंध में हीनादिक हो सकती है, उसकी बात नहीं है, क्योंकि इस प्रकार के नियम को करने वाले सूत्र का व्याख्यान उपलब्ध नहीं होता। अब हम ये अन्य जो कथन है उसके बाद कल पढ़ेंगे, आज तो यहीं रुकेंगे। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो फालो सोवाणी मस्तकन सदा देत अश्विन भाई।
नमोरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वर्याणं नमो लोए सप्तस्तावणं नमो